ऐसे लोग पार्टी में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रौढ़ा में भी प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए उनके प्रति इतनी गंभीर होनी चाहिए कि कृष्ण का अतिरिक्त कहीं भी उनका तनिक भी एक खंड अंश भी मित्र की न हो, तो उस समय वो पार्टी का है। करीब करीब प्रौढ़ा या प्रौढ़ा और पार्थी एक है, कोई चिंता नहीं। ये सब लेकर के क्या करेगा तुम लोग? अभी नीचे की बात, ये सामाजिक चीज है, निष्ठा बनने में
हमारा शरीर के लगेंगे, शरीर के जन्म से तो
नहीं, आत्मा शरीर धारण करेगा। शरीर तो धारण नहीं करता, शरीर शरीर धारण शरीर करता है नहीं, कौन धारण करता है? इसका मतलब है जब तक शरीर धारण करता है तब तक उसकी साधना पूरी नहीं होती।
इसका मतलब यह हो गया आत्मा भी शरीर का बन जाता
है, आत्मा ही बंधा हुआ है बन जाता है, ऐसा नया कोई सिद्धांत नहीं है। वो भी बंधा ही हुआ है, शरीर को ही समझ रहा है कि मैं
शरीर से जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक वो भाव प्राप्त नहीं करता।
ज्ञान से जैसे हम लोग छूटे हैं, ज्ञान से हम जानते हैं कि अब मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर भी उसे बदलू, मान अपमान राग द्वेष प्रतिष्ठा इसे बदलू। अरे इतना जल्दी आ गई, लोगों को प्यास लग गई, मैं भोजन नहीं करना चाहती थी, डेलिशियस किंतु आ गया, अब कपड़े अच्छे अच्छे शानदार आ गए हैं, पढ़ना तो जब आ गए हैं तो उसे तो आ गए। कोई ब्रह्मचारी करा मैं विवाह नहीं करना चाहता था, तो अब मैं जब आ गया यही होना है तो मैं क्या करूँ, मैं निकला कर ये सब कमजोर।
शरीर के विषय में
उनका पहले समाप्त हो जाए, शरीर ये जीव है, इसलिए ये फिर से शरीर ग्रहण नहीं होता। जैसे कपड़ा आपका है वो शरीर नहीं ग्रहण करेगा, हम व्यक्ति एक कपड़े को धारण करते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे जीवात्मा एक कपड़े को धारण करता है छोड़ देता है, किंतु यह कहना भी ठीक नहीं है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों से अपने मन के अधिक के कर्मों का जो फल भोग रहे हैं वो प्रकृति उसको धारण शरीर कराती है जबरदस्त माया। जब तक वो माया के वश में रहता है माया ये सिद्ध अवस्था, इसी माया का नाम है प्रकृति अथवा महामाया। वो हमको शरीर धारण कराती है, छुटा भी जाती है, और अंत में योग माया का बल जब मिलता है तब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, तो भगवान का बदल करना चाहिए। योग माया इस शरीर को बदल करके उस प्रकट पूजा में वहां पर भी शरीर मिलेगा, तो उस मिलने में अब दोष नहीं है, तो थोड़ा सा गंध दोष में रहता है, गंध और दोष में अंतर है। किरासन का तेल कहीं है, उधर से गया था वो पास आ गया, किरासन तेल तो लगा नहीं, उसकी हवा लग करके कुछ देर तक ऐसे हुआ। इसलिए उन गोपियों के घर में जन्म ग्रहण करके या गोपों के घर में पुरुष के रूप में सखा के रूप में जीवन करते, विशेष करके गोपियों के रूप जन्म ग्रहण करते, पहले जन्म का उन्होंने साधन किया है, भावावस्था तक आया है, अब हवा अवस्था से ऊपर प्रेम में पढ़ना है, अब कृष्ण की प्राप्ति होने वाली है, उस समय में कृष्ण के प्रति अनुराग तो ही है, अमित सिद्धाओं के संपर्क से जो कुछ थोड़ा सा दोष है वो दूर होगा, जिसको विवाह से पहले नहीं हुआ वो दूसरी जगह में विवाहित हो गई, और होने के बाद में उसके बच्चे भी हुए। कृष्ण के प्रति अनुराग है किंतु इतने तत्व रूप में नहीं है जो अपने पतियों के साथ में संपर्क न कर सके।
मेरा वहाँ डाउट ये है कि ये जो भाव है, ये जो स्थितियाँ हैं, जो बच्चा सोचिए और प्रौढ़ा की, ये शरीर के साथ है या आत्मा के साथ है? और जब आत्मा के साथ अगर है तो फिर जिनमें है फिर उनके पुनर्जन्म उनका जाम चला जाता है।
अभी नीचे की बात बहुत, अभी कर्म फल को समझिए।
पिछले साल में आपने ये
कहा था, मैं क्या करूँ, आप आते हैं एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन में देखता हूँ कि अभी कच्चे हैं, कुछ अपने से भी प्रस्तुत होना, शिक्षक के ऊपर में पूरा भार देने से नहीं चाहिए। उसने टास्क दिया कि इसको घर से कंप्लीट करके दे, और वो घर में देखता ही नहीं है, जब स्कूल में आता है तो वो ही
है।
इसलिए मैं जो बतलाता हूँ उसको अध्ययन कीजिए, विचार भी कीजिए, विचार करके कुछ अग्रसर होकर के आएंगे तब हमारी बातों को समझे, नहीं तो हम ऊपर की बात ले जाएंगे अब फिर हमको खसीट लेंगे।
ये
प्रश्न बना नहीं, गड़बड़ हो गया।
क्या प्रश्न क्या होना चाहिए, इस प्रश्न को तो ठीक कर दो।
अच्छा, यदि भगवान मर जाए तो उनके बदले में कौन चलाएगा जिया? सृष्टि। यदि भगवान मर जाए
तो
ये प्रश्न ठीक है कि
वो तो हमारे
प्रश्न ही अपने नल एंड वाइट, किसे कहते हैं नल एंड वाइट, मतलब नल मतलब जो हो ही नहीं सकता, जिस चीज का है।
तो ये प्रश्न ठीक है कि गलत
है? प्रश्न है कि नहीं ठीक और गलत में भी अगर हम कहें गलत है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ सापेक्ष बात कह दी है, लेकिन जिसका अस्तित्व ही नहीं बनता हो ये वैसी बात।
ऐसे ही कुछ प्रश्न होते हैं प्राचीन काल में, ऐसे ही एक प्रश्न पूछने की उन्होंने कहा, यदि गलत कोई प्रश्न किया, प्रश्न नहीं या प्रश्न किया, उसका सीन उठ जाएगा। बस पहले विचार करके देखा कि प्रश्न ठीक बनता है, पहले ये देखो। पहले तो ये शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, इसको समझा जाए। आत्मा का अपना अलग से ही एक शरीर है, जिसको शरीर धारण करने की आवश्यकता है, अपना ही उसका मन है, अपना ही उसका शरीर है, अपनी ही बुद्धि है, अपना ही सब कुछ है आत्मा का है।
उसे नहीं समझ,
किंतु वो दिखता है अलग अलग, जैसे एक चीनी चीनी है, चीनी को एक सांड के रूप में उसको बदल दिया, एक ढांचा लिया सांड का, और चीनी को थोड़ा सा गर्म करके और पिघला करके अब फिर उसी के अंदर में उस सांचे में डाल दिया, वो चीनी सांड हो गई। तो उसमें आंख जैसे दिख गया है, सिंह भी उसने बना रखा है, पूंछ बना रखा है, पैर बना रखा है, पेट बना रखा है, छाती सब कुछ। अच्छा बताइए ये उसके पैर में उसके हाथ में कोई अंतर है कि
नहीं? शेप में अंतर आएगा, स्वभाव तो एक ही रहेगा गलने का।
मिठास कहाँ पर कम रहेगी?
मिठास बराबर रहेगी,
ये समझे
मिठास
स्वरूप,
मतलब हर जगह वो चीनी ही रहेगी।
वो चीनी है ना,
हर जगह वो चीनी,
वो चीनी के अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर भी
आकार में बदलाव,
आकार में बदलाव है, आंख आंख है, कान कान है, सिंह सिंह है, और पैर ये सब है,
ऐसी आत्मा का शरीर है।
किंतु जो असल सांड है उसके मन में, आत्मा में, गुणों में और शरीर में ये सब अंतर है, यहाँ तक कि शरीर के अंगों में भी कुछ अंतर है। कैसे? दांत इतना कठोर है, दांत है ना उनका, सींग बड़ी
सख्त है,
सख्त होती है, और ये शरीर और पेट कितना कोमल है,
हड्डी की मात्रा ज्यादा है,
कम है, तो ये सब में अंतर है। किंतु जो
चीनी
का जो सांड बना है उसके प्रत्येक अंग ही एकदम चीनी, उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे आत्मा का जो शरीर है वो केवल आत्मा का ही बना है, उसमें कोई दूसरी देश धारण करने का, उसका मन और आत्मा अलग अलग नहीं। इस चीज को पहले
से बहुत बढ़िया उदाहरण महाराज, मैं बड़े समय से खोज रहा था कोई ऐसा उदाहरण नहीं दे, मजा नहीं है।
अब हम लोगों का जो शरीर है उसकी उष्ण का जो चमड़ा है ऊपर से दिख पड़ता है वो भी चीनी है, उससे सिंह भी चीनी है, उसका प्रत्येक चीज भी चीनी है, दूसरा उसमें कोई भी चीज नहीं, मिलावट नहीं है। यदि रंग भी रहे तो उसमें रंग भी नहीं है, उसका कॉलर भी अपना है, किंतु सन में जो रंग लगाया जाएगा वो हो सकता है दूसरी चीज। किंतु आत्मा का जो शरीर होता है उसका सर्वस्व योग की तरबार सब कुछ आत्मा का होता है। और इधर में जो परिकर इस जगत में आते हैं उस जगत से उनका शरीर भी ऐसे होता है, भगवान का शरीर भी ऐसा है, किंतु हम लोग ऐसा देखते हैं जैसा कि हम लोगों का ही शरीर है। जैसे हम लोगों के शरीर में आत्मा मन और शरीर में अंतर, और शरीर के भी प्रत्येक चीजों में अंतर है। क्या अंतर?
चमड़ी अलग,
कहीं पर
रंग,
कहीं पर मीठी अधिक है, कहीं पर शून्य अधिक है, आकाश है,
जल अलग,
कहीं पर वायु अधिक है, कहीं पर वायु की अधिकता है, कहीं अग्नि की अधिकता है, ये सब इसमें अधिक है। आंखों में किस चीज की अधिकता है?
तेज
की। कान में किस चीज की अधिकता है? वायु की अधिकता है। ये जीभ में किस चीज की अधिकता है? अपने आप पानी आ जाता है, पानी
रस।
इस तरह से पांच चीजें इसमें अलग अलग हैं, किंतु पांचों चीजें जो बनी है एक चीज की, एक ही चीज से बनी, किस चीज से बनी जाएगी?
वैसे ऊपर तक ले जाए नहीं,
पांच
तो
कहां
से बने? तो
तामसिक अहंकार से ये सब। उससे पहले चित्त एक होता है, अहंकार और चित्त, चित्त से अहंकार, अहंकार से सब ये सब।
महातत्व
बहुत से इस तरह से बद्ध जीव में ये प्रधान है,
पूरे लोगों में
बद्ध माया के द्वारा जो बने उनमें ये प्रधान। अच्छा अब देखिए, एक आदमी को भक्ति लेस मात्र नहीं है ना, नहीं, और किसी को थोड़ी सी अब भक्ति साधु संघ का, अब दोनों के शरीर में कुछ अंतर होगा कि नहीं? स्थूल शरीर में होगा कि नहीं? क्या
होगा?
शरीर में
एक ही समय शरीर
में राशि,
तो भक्ति जहाँ आने लगी उसका रूपांतर होने
लगा,
एक ही जैसा रूपांतर होगा, ऐसा रूपांतर होगा जिसमें भावावस्था आएगी। भावावस्था वाले व्यक्ति का शरीर और एक तन अभी जो भक्ति से संबंध है उनके शरीर में बहुत, उसमें जो भक्ति शरीर में क्रियाएं होनी चाहिए उसमें क्रिया नहीं रहेगी, जिसको भावावस्था में नहीं किया, उसको काम क्रोध लोभ मद मोह अपराध ये सब भावावस्था, ये भक्ति का अनुकूल हो जाएगा पूर्ण रूप से। किंतु तो भी अभी आत्मा नहीं है, इसलिए जब उस भावावस्था वाले व्यक्ति की जब शरीर छोड़ देगा तब फिर उसको अब ये शरीर, तब उसको किंतु तो जन्म होने पर भी गंध नहीं गया है पहले का, कुछ गंध है,
जड़ जगत का हल्का सा गंध है,
गंध उसमें
दोष नहीं है, गंध है
दोष नहीं है, गंध
दोष और गंध को यूँ समझो जैसे मिट्टी का तेल इसमें लग गया तो दोष है, लेकिन इसके बाद से गुजरे हैं और उसकी महक आई है तो वो गंध है,
वो सेंट चला जा सकता है, किंतु जो मिट्टी का तेल लगा दिया उसमें बहुत विलंब, उसको निकाल करके धो धा करके उसको सेंट लगा करके ठीक, ऐसा तो वहां पर जन्म मरण नहीं है, किंतु संग से वो गंध चला जाता है बस इतना। जिसे जिसको लड़का हुआ उनको जोग माया द्वार पर रोक देती है, तू नहीं जा सकती राष्ट्र, तो उसका क्या होता है कि प्रक्रिया ताप से और कृष्ण को भीतर में ले जाकर के आलिंगन करते हैं, उससे शुभ और अशुभ दोनों दूर हो जाता है। शुभ मैंने क्या, अभी तक अपने पति के प्रति भी कृष्ण के प्रति दोनों के प्रति कुछ कुछ था, कृष्ण के प्रति अधिक था किंतु पति में भी थोड़ी सी भावना थी उस शरीर के द्वारा। अब यह थोड़ी कुछ यह अशुभ या अशुभ है, कुछ अशुभ भी होगा तो वो दूर हो जाएगा, अशुभ जल करके खाक हो जाएगा उसके तीव्र ताप से। और उसी शरीर से ही अब पुत्र ये मेरा पुत्र है ये भाव नहीं रहेगा, ये पति मेरे हैं ये भाव नहीं रहेगा, और भी जितनी चीजें हैं वो सब दूर होकर के तब वो नित्य सिद्धांतों के साथ में कृष्ण की लीला में।
ये तो वो आत्मा की जो चिन्ह है उसका लाभ नहीं हो सकती
है,
इस जड़ शरीर में रहते हुए जब तक आत्मा है तब तक वो चिन्ह है उसका लाभ कर सकती है।
तो इसका मतलब है जड़ वाला अधिक शक्तिशाली है, चिन्ह वाला कम है, इसे जड़ रहते हुए चेतन नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, चेतन आता जाएगा इस शरीर को नष्ट करता जाएगा, इतना शक्तिशाली चेतन है,
इसे जड़ी चेतन बन जाएगा, जन्म लेना पड़ेगा।
एक दूषित हवा है और एक शुद्ध हवा है, दूषित हवा घर में बंद है, एक दरवाजा खोल दीजिए और एक दरवाजा क्या होगा, तो दबाती जाएगी उसको बाहर करती जाएगी और अपने आप करती रह जाएगी, अंत में उसको एक नंबर बाहर कर देगी पूरा।
एक बार आत्मा का अपने शरीर बताया, हम देखते हैं कि आत्मा को निराकार बताते हैं, और
कौन क्या क्या करते हैं और किस लोगों से भी बात संग करते हैं इस विषय में, आज इस विषय में मैं बोलता किंतु सभी लोग तैयार होते हैं।
हाँ जी, कोई प्रश्न था शरीर के ऊपर,
किस विषय में है भाई, जो हमने भाषण दिया था जीवात्मा की का शरीर वहाँ पर मैंने भाषण दिया,
शरीर कई तरह के
जरा उसको बाहर करके रखना पत्रिका को वहाँ पर आज बताया,
नहीं
आई बहुत सब आप समझने लायक हो गए।
कई जगह था सूक्ष्म शरीर, कई जगह था स्थूल शरीर, कई जगह था लिंग शरीर, ऐसे कई तरह के शरीर आते हैं, उसमें क्या क्या भेद है?
स्थूल शरीर आता है समझ में,
जड़ शरीर पंचकोश,
स्थूल शरीर समझ में आता है कि नहीं?
नहीं आता है,
स्थूल मैंने जिसको हम देते हैं ये भी पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार का स्थूल शरीर होता है, यहाँ पर मिट्टी अधिक है, यदि कोई आदमी मर जाता है तो उड़ नहीं जाएगा शरीर, मिट्टी प्रधान होने के कारण ये सारा शरीर जो स्थूल है ये मिट्टी हो जाएगा, किंतु इसमें जो आंशिक रूप में हवा है अग्नि है और क्या पानी है
पानी
और शून्य है, ये अपने अपने अंशों में जाकर के मिल जाएगा, मिट्टी की अधिकता इसमें, इसलिए ये सारा शरीर मिट्टी बन जाएगा किसी न किसी रूप में जरूर बनेगा। अभी जला दो राख हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद में राख मिट्टी में मिलकर हवा हवा के साथ में मिल जाएगी, आग आग के साथ में मिल जाएगी, सभी एलिमेंट जितने हैं पांचों पांचों में इस जगत में जितने भी शरीर हैं पृथ्वी के ऊपर उनमें मिट्टी अधिक, पानी में जो मछली इत्यादि है उसमें जल का भाग अधिक है, मरने पर उनका अधिकांश जो चीजें हैं वो पानी में के रूप में बदल जाएगा, मिट्टी इत्यादि कम है, विशेष करके स्वर्ग में जो देवता लोग हैं उनका यह स्थूल शरीर नहीं है, वहां पर वायु का अधिकता है, इसलिए वो लोग उनका शरीर पृथ्वी पर दिखता नहीं है जैसे पानी वायु नहीं दिखता, उसे और ऊपर चले जाओ ब्रह्म इत्यादि का शरीर मानसिक शरीर है, उसमें मन की प्रधानता अधिक है,
आकार तो फिर भी है
वही असल आकार, इस आकार से वो बड़ा अच्छा हो माने शुद्ध आकार है,
डिफाइंड आकार, इसे यूं कह सकते हैं आकार समस्त शरीरों में है लेकिन उनके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते चले जाते हैं,
स्थूल में ब्रह्मा का शरीर तक भी स्थूल शरीर है, उसके बाद में
एक सेकंड, मन से निर्मित ब्रह्मा का शरीर, लेकिन पृथ्वी जल आयु अग्नि वगैरह का थोड़ा सा तो उसमें मात्रा होगी होगी या कतई नहीं ऐसे तो
उनमें शायद हो, किंतु मन भी जड़ है।
हाँ मन भी जड़ है, वो तो पृथ्वी जल वायु अग्नि मन बुद्धि
यदि उनमें से कुछ रहता ना तो ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग भी इंद्र प्रभृति देवता लोग उनको सहज ही देख पाते, सहज नहीं देख पाते, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर उसको कहा। मन बुद्धि अहंकार चित्त का जो शरीर इसके अंदर में बैठा है, जो आत्मा को घेरे हुए है, ये है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। किसका कारण? ये स्थूल शरीर का कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ये कार्य उसका है,
कार्य मतलब परिणाम,
परिणाम उसका है, उसी से ही ये बना है। पानी है ना, एक ग्लास में पानी रखिए सूख जाएगा, दूसरे दिन फिर उसमें पानी रखिए, तीसरे दिन रखिए, एक परत पड़ जाएगी कि नहीं, देखा है पड़ती है
पानी, खारा पानी तो विशेष
वो जल पड़ेगी कहीं भी, ये परत पड़ती है, हवा के भी परत पड़ती है, घनी हवा होती है पतली हवा होती है, इस तरह सबका चीज। तो सूक्ष्म शरीर पहले अहंकार के रूप में होता है, उसका कोई रूप नहीं दिखता है किंतु है उसमें, और इससे भी सूक्ष्म रूप है आत्मा का, जो इन प्राकृत चीजों में से थोड़ी सी भी कोई गंध रहे तो वो नहीं दिखे, किंतु असल में वही मूल शरीर है, आकार है,
जिसके ये सब लिप्टर है
और उसके ले बाहर बाहर की जैसे भगवान है, ब्रह्म है, उसका एक शरीर है, किंतु जड़ कहां जहां थोड़ा सा भी कुछ भाव रहेगा नहीं दिखेगा, किंतु उनका आकार है, और वह आकार कैसा है, कभी नष्ट नहीं होने वाला रहेगा, कभी उसका जन्म नहीं होगा, तनिक भी उसमें कई वृद्धि ह्रास ये सब एक समय सनातन। कृष्ण का रूप आज से कोटि कोटि वर्ष पहले भी जो था आज भी वही है, कोटि कोटि वर्षों में वही रहेगा, प्रलय हो जाने के बाद भी वही रहेगा, सब समय हो सकता है, ये चिन्ह से हमारी आत्मा का भी शरीर ऐसा है।
जैसे उनकी अवस्था है, उम्र बढ़ती है भगवान के शरीर, मतलब माँ के साथ है जो दूध पी रहे हैं, फिर और अभी
16 साल तक तो बढ़ती ना,
जैसे आप चिन्ह में
बचपन से लेकर 16 साल तक तो बढ़ती
है, एक तरफ बढ़ है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, फिर यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, और छोड़ दो तो क्या होगा, तो ये रबड़ बढ़ा या घटा या क्या हुआ, जब बढ़ाए थे तो बढ़ा कि नहीं,
बढ़ा बढ़ा
बढ़ा तो देखते तो है बढ़ा, और छोड़ देते हैं तब फिर ऐसा ही हो जाता है, तो वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या हुआ, तो कृष्ण छोटे से बड़े नहीं हुए, उसमें बुद्धिहास नहीं, किंतु ऐसी वो वस्तु है, कृष्ण के इच्छा के साथ ही साथ में वो बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी, यहाँ तक कि छोटा सा मुख में विश्व अखिल विश्व ब्रह्मांड उसमें प्रवेश कर जाएगा, तभी वैसे वृंदावन धाम यही धाम, उसमें कुटी करोड़ों करोड़ों गायें, कितनी करोड़ों गायें उसमें घूम रही है, और फिर भी उसका सब खाली है, और आज वैसे ही यदि करोड़ करोड़ गाय भर दिया जाए तो क्या होगा, जगह ही नहीं है, लोग कल्पना नहीं कर सकेंगे यहाँ पर इतनी गाय कैसे,
ये 64 करोड़ आदमी कैसे मर गए, 64 करोड़ भारत की जनता
महाराज, इसमें आपने एक बार व्याख्या दी थी, जिनमें जगत है गोलोक में, गोकुल गोलोक में, वो अपनी मैया के लिए हमेशा बालक है, और वात्सल्य रस का सतत प्रभाव माँ बेटे में चलता है, अपने सखाओं के लिए उनका नित्य जो वो रूप है वो सखावत और गोपियों के लिए वो किसी की छोड़ है। लेकिन अब क्योंकि यही लीला जब यहाँ चल रही है भौतिक जगत में, हम लोग कथा के रूप में समझते हैं और हम तो काल के हिसाब से ही बातें देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पैदा हुए फिर बड़े हुए फिर, और वो तो समस्त लीलाएं नित्य अपने में सतत चल रही है।
वो तो ऐसे
जीव जो है वो उम्र को बढ़ता हुआ देखता है पर ऐसा होता है।
ये सॉलिड जो समझ है ना, वो जब वहाँ पर जन्म होगा और जब अपने आत्मा से जब देखेंगे तभी तो आप रियलाइज। यह हम लोग की अवस्था में आने से थोड़ा सा अनुमान होगा, उस चीज को थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया जा सकता, किंतु हो सकता है कि हमारे उस डिफाइन करने में भी गड़बड़ी हो। जब उत्तम महाभागवत हो जाएंगे तब गड़बड़ी नहीं है,
अलग हम तब तक प्रश्न पूछने लायक हो जाएंगे।
प्रश्न तो ऐसा अटपटा पूछना ही पड़ेगा, होते होते बच्चा पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
महाराज आप उनको पिता को पता होता ना कि ये बच्चा इतने दिन तक, अभी 5 साल तक ऐसे हो जाएगा, 10 साल तक ऐसे हो जाएगा, बच्चे को तो तुमको नहीं पता ना महाराज, तो कब तक हम ऐसे हो जाएंगे जिससे हम ठीक ठाक
बहुत जल्दी हो जाएंगे।
राज्य शरीर में आपने लिंग शरीर का नहीं शरीर
लिंग माने होता है चिन्ह, चिन्ह हवा कैसी चल रही है, हवा है कि नहीं, कैसे समझ रहे जी हवा है, तो ये हवा का लिंग है स्पर्श। मन इन चीजों से, इन आंखों से, शरीर से नहीं समझ सकते, उसका अनुमान लगा सकते, मन नहीं रहता तो आप सोच नहीं सकते। इस चीज का जो लिंग है, चिन्ह है, उस शरीर को कहते हैं लिंग शरीर। वही लिंग शरीर मन बुद्धि अहंकार और चित्त, उसके टार्गेट डिवीजन एक ही चीज है, क्रमशः थिकनेस के ऊपर में ये चीज है। जब अत्यंत ठीक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं मन। उसे और थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा विवेचना करेगी, मन विवेचना नहीं करता, ये जैसे तैसे कोई चीज को देख करके टूट पड़ता है और उस पर कूद जाता है, उसमें मरूंगा कि बचूंगा, अच्छी है कि चीज है, ये नहीं है, बस सुंदर भावनी चीज है, ये 20 का बना है लड्डू है या क्या है, ये जो और बुद्धि इस पर विचार करते हैं। आपको काम पर जाना है,
हमारा मीटिंग नंबर
तो तुम पीछे जाएगी।
भगवान
बुद्धि बुद्धि विवेचना करती है, मन कभी मानता है कभी नहीं मानता है, किंतु बुद्धि यदि तीक्ष्ण हुई तो मन से मनवा ले, और बुद्धि इतने भी परिपक्व नहीं है तो मन उसकी बात नहीं। इस बुद्धि के ऊपर भी एक चीज होता है अहंकार, अहंकार माने
घमंड,
आत्मा हूं किंतु अब समझ रखा है मैंने, मैं शरीर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं राजा हूं, मैं क्या हूं, ये पहले मन में एक भाव केवल आता है, मन में नहीं आता, मन की तो उस समय स्थिति नहीं। वो आत्मा जब चित्त से ढक जाता है और वही चित्त जबकि जरा और गहरा हो जाता है तो वो अहंकार, वो द्वितीय नंबर का पर्दा है मन के ऊपर, आत्मा के शरीर के ऊपर।
अहंकार बुद्धि को कंट्रोल करता है,
अहंकार से ही बुद्धि होता है। ये बुद्धि अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक राजसिक और मानसिक, उसके अनुसार में बुद्धि भी उसी प्रकार से होती है और शरीर भी उसी तरह से, किंतु ये बनता है अहंकार बनता है किससे, प्रकृति का सबसे पहला सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आवरण है मत तत्व अथवा चित्त पर, वो जो आत्मा के लिए चित्त शब्द का प्रयोग किया है उसमें हलंत आखा त होता है चित, और इसमें क्या होता है ची और डबल त चित्त, वही मत तत्व ही पहला ये आत्मा का कवरेज, और ऐसा है उसमें से अपने को भी देख सकता है यदि शुद्ध हो तो। बारह बज गया, क्या बोला? या अब डिस्पर्स कीजिए मीटिंग। तो ये महत्त्व सबसे पहला, प्रकृति उसी से आत्मा को बांधती है सबसे पहले, और जब तक ये नहीं जाएगी तब तक मुक्त नहीं होगा।
ये लास्ट में जाएगा
है?
ये लास्ट में जाएगा,
ये लास्ट में जाएगा। मन जाने के बाद भी, मन शुद्ध होने पर बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि से अहंकार शुद्ध होगा, अहंकार शुद्ध होने के बाद में तब ये महत्त्व शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद में आत्मा के अंदर में जब भाव पैदा होगा और भाव परिपक्व अवस्था में आएगा और प्रेम होने को होगा, तो इसका फल शुद्ध जाएगा।
ये महाराज शुद्ध हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मन है
शुद्ध होकर रहेगी स्थिति
ये सब।
महाराज आत्मा का अहंकार क्या होगा?
आत्मा मैं कृष्ण की दासी,
ये
किसका
है? राधा जी,
ये अहंकार आत्मा का
है। और सात्विक अहंकार क्या होगा?
सात्विक अहंकार अभी ये रहेगा, सात्विक अहंकार ये होगा, सात्विक अहंकार का ये रहेगा, वो रहेगा
ज्ञान रहेगा,
क्रिया नहीं होगी, वो इसकी करने नहीं देगा, शरीर वो रहेगा। आओ बैठो, उन्होंने खबर किया होगा महत्व। सात्विक अहंकार के बारे में आप ये पूछ रहे, सात्विक अहंकार है, निजी अहंकार तो गया, मैं कृष्ण की दासी हूँ, उसमें मन की जो क्रियाएं हैं उसमें नहीं रहेगी, तो वो काम इत्यादि नहीं रह करके वो शुद्ध हो जाएगा।
सात्विक
सात्विक उसमें जो सत्व के गुण हैं उनमें वो रहेगा, जैसे है सफल दया भाव, क्रोध नहीं, ये सब उसी उसी मन के तामसिक होने से क्रोध बहुत होता है, राशिक होने से राशिक भाव पैदा
लोभ वगैरह
है,
लोभ चंचलता,
और सात्विक होने से कुछ भगवत भक्ति के निकट को पहुंचने के योग्य हो जाता है,
दया भाव वगैरह,
दया भाव होगा, सद्गुण अच्छे अच्छे होंगे, लोगों के प्रति प्रीति होगी,
इसको सात्विक अहंकार बोलते
हैं। सब में एक और एक को सब में देखेंगे,
नहीं अभी नहीं, वो तो आत्मगुण होता है, वो अब भक्ति होने के बाद में तब उसी में रह करके ये देखेगा भक्ति के जो।
महाराज जी तो मन के गुण हुए करुणा और ये सब,
मन से हम आरंभ करते हैं किंतु है ऊपर से आरंभ, महत्त्व फिर अहंकार, इसके बाद में बुद्धि, लास्ट में ये मन है, किंतु बना है वो महत्त्व। और ये महत्त्व तो बना कैसे? यही भगवान को भूलते हैं, तभी साथ ही साथ में महत्त्व तो प्रकृति का यह सूक्ष्म आवरण उसके ऊपर पड़ जाता है, यही बेड़ी हथकड़ी पहले, अब वही कठोर होते 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 पहले अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, मन से ये शरीर को करने के लिए और तरह तरह के उत्पाद, किंतु इसको कहते हैं अविद्या, इसको महत्त्व का कारण अविद्या है, भगवान को नहीं जानना, भगवान को खुला भूल जाना ही अविद्या, ये पहली अविद्या है जो महत्त्व का कारण बनती है।
और ये अविद्या पंचम क्लेश का जो पांच क्लेश होता है
वही अविद्या पहला है, वो जीव का पहला जो दोष है ये अविद्या, भगवान को खुलना ही अविद्या, विद्या मैंने जानना, और विद्या मैंने नहीं जानना, हम कृष्ण को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम संसार में फंस जाते
हैं। जानने के बाद भी हो सकते हैं, मन पहले जानते थे
अब ना, ऐसा नहीं हो सकता,
कल शुरू से नित्य खुले रहे,
शुरू से जब से
पैदा हुए
जीवात्मा है,
पिछले जन्म में भूले हुए थे, जब से है
मैंने जब से अनादि सृष्टि हो रही है, अनादि जन्म थे, ये जन्म ही नहीं पिछला, जब से ये सृष्टि पहली आरंभ हुई, ये पहली सृष्टि नहीं है, कोटि कोटि
बात। महाराज तो हम बने ही बद्ध जीव थे,
हम बद्ध ही जीव ही थे
तो फिर तो भूलना ही
वृंदावन से नहीं आए,
तो फिर भूलना नहीं था, जब बद्ध जीव बने थे तो फिर तो भूलना ही बने ही,
ये भाषा दोष है, ये भाषा का दोष है।
महाराज जैसे दो दो प्रकार के जीव, एक नित्य मुक्त और एक बद्ध,
तो नित्य बद्ध नहीं है,
नित्य मुक्त
तो है, नित्य मुक्त तो हो सकता है किंतु अनादि बद्ध होता है, नित्य पत्र नहीं होगा, वो ऐसे है। वैकुंठ में जो जीव है वो नित्य है और नित्य ही कृष्ण की सेवा में नित्य। वैकुंठ वाले भी नित्य मुक्त हैं और वो भगवत सेवा में नित्य,
तो
उनके पद होने का कोई प्रश्न नहीं।
वैकुंठ में स्वर्ग
होगा नहीं, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत है, वो ब्रह्मांड से बाहर है। तो उन लोगों का वो लोग नित्य ही है, वो नहीं जानते हैं ये माया क्या होती है। जैसे हम वैकुंठ, हम लोगों के लिए वैकुंठ कैसा होता है, उनको भी ऐसा होता है। माया किसको कहते हैं और भक्त किसको, वो नहीं जानते। अब यहाँ के जो जीव है ये नित्य है, कैसे नित्य है, किस रूप में नित्य है? जब से ये हैं वो तो मुक्त रहे, और ये जब से हैं तब से अभी तक अविद्या द्वारा कृष्ण। कैसे? एक कल्पना करो, एक तलवार है तब पतली उसकी धार है, खूब संभल करके कुछ सरसों ऊपर से गिराओ, ये तलवार के बीच धार पर गिरे, वो किधर जाएगी, बाएं की दाहिने की,
इधर सेंटर,
सेंटर में गिराओ, किंतु धार पर जब जाएगी तो एक इधर जाएगी या इधर जाएगी,
कुछ इधर जाएंगे।
क्यों? तुम बैलेंस ठीक रख करके दो, जितना भी बैलेंस रखो वो एक न एक तरफ। जब से ये जीव बना भगवान से तो प्रकाशित हुआ, यही प्रकाशित हुआ प्रणाब देसाई विष्णु से, वो वाले तो जब से वो बलदेव से वो मुक्त होकर के हो रहे हैं, किंतु ये जब इनसे प्रकाशित हुए तो इनमें स्वतंत्रता दी, उस समय भी स्वतंत्रता दी। तुम चाहे इधर में लुढ़को चाहे उधर मको, बीच में तुम रह नहीं सकते। सरसों को चाहे जिस बैलेंस से गिराओ,
अगर हम उस तरफ गिरते तो नित्य मुक्त हो
गए,
क्यों गिरे?
अब यह तो कहता हूँ
इसका कोई कारण नहीं
है, इसलिए किया है कि ये जीव चेतन है। चेतन की परिभाषा यह है जिसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और सुख दुख की अनुभूति, ये चेतनता का गुण है। प्रभु ने देते ही एक क्षण के अंदर में एक आज जैसे तुम इधर जाओ या इधर आओ,
मुझे पता था इधर क्या उधर क्या
है, चाहे नहीं है, है पता है। जैसे हम मान समझते हैं कि ये विषय, ये चीज जो है ये अपराध है, क्यों करते हैं? यह जीव की स्वतंत्रता है, इस पर भगवान हस्तक्षेप नहीं करते।
अभी उस समय भी स्वतंत्रता थी इधर या उधर जाने
की, वो वही तो नित्य है, वही नित्य है। वो इच्छा शक्ति जो है स्वतंत्रता है, सुख दुखी अनुभूति, और मैं जो कुछ करूंगा अपनी स्वतंत्रता से करूंगा, भगवान इस पर हस्तक्षेप। अच्छा तुम जो इच्छा, किन्तु देखो फल मेरे यहाँ, यदि इधर जाएगा तो ये होगा, इधर जाएगा तो। जैसे हम भवतावश अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, जिस प्रकार से अजामिल अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सका, किंतु उसका दुख किसको भगना पड़ेगा?
अजामिल को ही।
ठीक उसी तरह से हमारी स्वतंत्रता पर, चाहे जिस समय क्षण हम प्रकट हुए उस समय से हमारी स्वतंत्रता है। और दोनों चीजें हैं, दोनों तरफ, एक तरफ में है माया, एक तरफ में है, दोनों में से फड़क एक क्षण में किनको इधर उधर जाना है। उसने देखा यदि उधर में दृष्टि पड़ गई तो उधर चला गया, यदि इधर में दृष्टि पड़ी तो इधर, जिधर लोग है
महाराज वो एक क्षण अभी कई जन्मों से चल रहा है,
अब वही चल रहा है। अभी
एक क्षण में सारे जन्मों का
ऐसा ही होता है, एक क्षण में गलती याद करने पर उसका फल बहुत देने पर।
एक क्षण
आपको एक किसने तमाचा मारा आपके हाथ में रिवॉल्वर, उसमें विचार करके दूसरा में बुद्धि नहीं रहती, क्या करते हैं? आप उसके लिए मुकदमा 10 वर्ष चला और आपको फांसी की सजा।
बहुत भारत एक जन्म की हुई ना, अब ये तो करोड़ों जन्म, छोटे
करोड़ों जन्म, अखंड काल है तो इसका कोई मूल्य नहीं।
महाराज जी अभी बद से फिर मुक्त होंगे जब होगी, तो ये ट्रांजिशन भी एक क्षण नहीं होगा फिर,
है
मतलब की ये ट्रांजिशन है, बद से मुक्त होने
परिवर्तन है,
परिवर्तन है।
तो लंबा प्रोसेस है, साधन और साधक, लेकिन फिर भी जब होगा एक्चुअली एक ही क्षण में होगा, वेल डिफाइंड पॉइंट।
जैसे एक क्षण में स्वतंत्र इच्छा अगर हम बद्ध हो गए उसी तरह से
ना, ना,
नहीं
ऐसा उसका एक क्षण में जैसे हमने किसी
महाराज जी
गोली मारी इसको विचार रिवॉल्वर चला तो उसका क्षण भर में ही भोग हो जाए होगा, वो तो लंबा प्रोसेस है, अभी विचार चलेगा, विचार में अभी प्रीवियस काउंसिल तक वो अपील कर सकता है और इसके बाद में राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दें न क्षमा करें अभी तब तक
वो
अभी बहुत दिन तक और इतने दिन तक वो मर रहा है, मरना जारी है,
बंधन कम हो जाएगा और एक क्षण आगे धीरे धीरे बंधन कम होते जाएगा,
बंधन कम होता जाएगा, माइक भाव दूर होते जाएंगे
और एक क्षण में जब लास्ट होगा
प्रक्रिया जो चलती रहती
है। वो कह रहे हैं महाराज की जब हमारी साधन की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब
जैसे
तब जैसे होगा।
हमको गंगा में स्नान करना है, क्या करेगा, क्या करेगा अभी
लगा
घर में स्नान कर लेगा, यहाँ से कार से ट्रेन से अठारह वो वहाँ जाएगा, जाने में कितना समय लगेगा,
वो सब तो उसमें
फिर इसके बाद में कपड़े उतारेगा कि नहीं, इसके बाद में जल में कितने पानी में स्नान कर लेगा, फिर कितने पानी में जाएगा, कितने में जाएगा, फिर कितने में जाएगा, तब जब तुम क्षण भर में तुम डुबकी लगाएगा तो पहले डुबकी कहाँ से लगेगी, क्षण भर में कहाँ
के लिए
चलता चला
अपनी जेब से दुराचार महाराज क्षण भर में,
ये इसलिए कहा गया कि अखंड काल में जो हम अभी बद्ध हुए हैं इतना दिन जो चला गया है इसका कोई मूल्य नहीं है, क्षण भर है,
क्षण का भी डेफिनेशन नहीं है,
क्षण का डेफिनेशन जिसमें मुक्त हो जाता है उसके लिए हो गया, ये क्षण क्योंकि अखंड काल पड़ा है उसके मुक्त होकर के भोगने के लिए,
चंद कोटि
यदि एक आदमी मान लिया कि जिसे एमए या बीए पास किया और वो मान लिया कि डॉक्टर बनना चाहता है एमबीबीएस उसको पास करना पड़ेगा ना, तो एक क्षण में वो हो गया या क्या हुआ,
नहीं क्षण भर में हुआ,
किंतु मान लिया कि जिसे 10 वर्ष 20 वर्ष पढ़ा इसके बाद में नौकरी उसको 50 वर्ष की उम्र 60 वर्ष की उम्र तक रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो पीछे पढ़ना का जो समय था उसके लिए क्या चीज है, और वो तो अखंड काल तक जब तक अब कृष्ण है जब तक अब समय का अंत नहीं तब तक अखंड काल के लिए कृष्ण सेवा के लिए हो गया, वो उसको ऐसे मालूम पड़ता है जैसे हमने स्वप्न देखा था, स्वप्न में कोई चीज नहीं जब जब किया तो ऐसे वो देखता है यार भाई तो हमको एक सेकंड में ही कृष्ण की बात
की बात को, जो पायलट बने जहाज चलाते हैं हर जगह एक समय पायलट बन गए,
अच्छा महाराज एक
बात अपनी शाम को
छोड़ा था ऐसी विषय में कि जब मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जो बोला उसमें कौन कौन सी चीजें साथ जाती
है, मन के साथ में समस्त सारी इंद्रियां जाती हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त और इंद्रियां, इंद्रियां माने हाथ की इंद्रियां नहीं है, ये तो जड़ शरीर है, पांच इंद्रियां हमारी है ना ज्ञान इंद्रिय, क्या क्या
रसना स्पर्श ज्ञान चक्षु,
नहीं है
रसना स्पर्श ज्ञान चक्षु,
चक्षु
रसना
चक्षु कर्ण नासिका जीवा और इसे हम सेंस लाभ करते हैं, तो जिसे वो सेंस लाभ करते हैं वो इंद्रियां हैं, तो ये हाथ किसी चीज से स्पर्श करने से मरे हुए हाथ से स्पर्श करो तो उसको शीतल है या कठोर है ये मालूम होगा,
नहीं
यही नाक है मरने के बाद में श्वास लेगी,
नहीं
आंखें देख सकेंगी, तो इसलिए अधिष्ठात्र देवता उसके होते हैं वो इस पर काम करते, जैसे किसी का हाथ लकवा मार गया हाथ पैर चलता है,
नहीं चलता
हाथ पैर, इसलिए इसके अधिष्ठात्र देवता होते हैं वो इनके साथ में मन बुद्धि अहंकार चित्त और इंद्रियों का जो सेंस होता है वो इनके साथ में, इसके बाद में साथ ही साथ में रूपांतर हो जाता है इस पुरुष से, और मुक्त जो हो जाते हैं ये भी शरीर चला जाता है वो भी शरीर चला जाता है आत्मा का अपना शरीर,
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।